हेलो दोस्तों, मैं जगत चंदौली लेकर हाजिर हूं आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है नई दिशा। और मेरा साथ दे रही हैं हमेशा की तरह
प्रेमा नेगी।
तो प्रेमा, क्या कहती हो तुम, प्रोग्राम शुरू किया जाए?
ये भी कोई पूछने की बात है जगत।
हाँ, तो दोस्तों आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ, प्रेमा तुम्हें भी।
वैसे तुम्हारे बारे में बहुत कम चीजें हैं जो मुझे नहीं पता।
तो फिर ये बताओ कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की?
ओह, बस शायद यही एक चीज है जो मुझे नहीं पता।
देखो भाई, मैंने स्कूल की पढ़ाई गांव में की और फिर उसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आ गया।
अच्छा।
हाँ, कॉलेज के दौरान मुझे कई अलग अलग तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए कॉलेज की जिंदगी अपने परिवार वालों से दूर रहकर मौज मस्ती का एक जरिया थी।
बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे आज की युवा जनरेशन के लिए ये कहा जा सकता है।
हाँ, और कुछ ऐसे भी थे जो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आए थे ताकि वो आगे चलकर जीवन में कामयाब हो सकें और एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकें।
तो जगत, तुम किस तरह के लोगों में से थे?
भाई मैं तो उनमें से था जो यहाँ शहर में पढ़ाई के साथ साथ अपना सपना साकार करने के लिए आए थे। सच कहूँ प्रेमा, मैं तो शहर की इस भीड़ में अपना नाम तलाशने आया था।
नाम तलाशने?
मतलब मेरा सपना था कि मैं रेडियो पर हजारों लाखों लोगों से बात करूं।
अरे वाह जगत, और तुम्हारा ये सपना साकार हो गया है।
हाँ भाई, वो तो है।
लेकिन आज ये सब कुछ बताने का मकसद क्या था?
मकसद, चलिए बताता हूँ अपने पहले सेगमेंट जानो अनजाने में। दोस्तों, कॉलेज की जिंदगी उम्र का वो दौर है जब लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सही संगत में कई बार ये आकर्षण अच्छी चीजों के लिए होता है और कई बार यही आकर्षण गलत चीजों की तरफ भी होने लगता है, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, चोरी करना वगैरह वगैरह।
जगत, किशोर अवस्था में संगत का असर बहुत ज्यादा होता है, मगर अधिकतर बुरी संगत से युवा चाहते हुए भी दूर नहीं हो पाते।
प्रेमा, संगत में बहुत जरूरी होता है ना कह पाना।
मतलब
बहुत बार हमें पता होता है कि हमारे दोस्त हमें जिस चीज के लिए उकसा रहे हैं वो गलत है, मगर हम उन्हें मना नहीं कर पाते।
ये तो ठीक कहा तुमने।
शोध बताता है कि 70% से अधिक लोगों का रेड लाइट एरिया से परिचय ऐसी ही संगत के दबाव और दोस्तों के कहने पर हुआ।
और ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों के कारण हम HIV से सुरक्षित नहीं रह पाते।
बिल्कुल प्रेमा, इसीलिए मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि दोस्त कैसे भी हों, आप अगर कोई काम नहीं करना चाहते तो आपको मना करने की कुशलता सीखनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी बहाना बना सकते हैं, उनके दबाव को विपरीत भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पोलाइटली मना भी कर सकते हैं।
वो कैसे?
देखो प्रेमा, अक्सर लड़के उस दोस्त का मजाक उड़ाते हैं जो किसी ऐसे काम को करने में झिझकता हो जिसकी मर्दानगी या उसकी हिम्मत को दोस्तों के बीच ललकारा जाता है। और भाई, ऐसे में जरूरी है कि आप उसी ललकार को पलट दें। आप ऐसी स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें, समझदारी का परिचय दें, और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो जरूरी है कि दबाव बढ़ने से पहले आप उस परिस्थिति से दूर हो जाएं।
ये तो तुमने बहुत काम की बात बताई जगत।
अगर हमारे श्रोता हमें ईमेल और SMS के जरिए बताएंगे कि ये बात उन्हें पसंद आई, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा ना प्रेमा।
तो दोस्तों, जगत को निराश ना कीजिए, जल्दी से हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 9717678223।
और दोस्तों, अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जो कर देता है अच्छे अच्छों का भेजा फ्राई।
अच्छा जगत, जहाँ तक भेजा फ्राई की बात है तो तुम्हें इससे जुड़ी एक मजेदार बात बताऊं?
अरे बताओ ना प्रेमा।
हमने अपने एक एपिसोड में हमारे श्रोताओं से एक सवाल पूछा था कि ICTC का पूरा नाम क्या है।
अरे तो भाई, इसमें भेजा फ्राई करने वाली कौन सी बात है।
अरे दरअसल हमारे सवाल ने सचमुच हमारे श्रोताओं का भेजा फ्राई कर दिया और इसका हमारे पास एक भी सही जवाब नहीं आया।
क्या?
जैसा कि सवाल तो बहाना है, मकसद हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाना है, तो उस सवाल का सही जवाब हमें अपने श्रोताओं को बता देना चाहिए। क्या कहते हो?
बिल्कुल प्रेमा।
तो दोस्तों, ICTC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहां आप अपना HIV टेस्ट करवा सकते हैं और साथ ही इसके संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
वैसे प्रेमा, भले ही हमारे श्रोता इस सवाल का एक भी सही जवाब न भेज पाए हों, लेकिन पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के कई सारे सही जवाब हमारे पास आए हैं। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या उसे एड्स है?
और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि किसी को देखकर ये नहीं पता लगाया जा सकता कि व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है।
और प्रेमा आज किसका नंबर है?
एपिसोड 18 के विजेता का।
और एपिसोड 18 के सवाल का सही जवाब भेजकर हमारे आज के विजेता बन गए हैं राजीव तुगलकाबाद से।
आपको ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो।
और अब आज का भेजा फ्राई सवाल, जिसके लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने क्विज मास्टर जी के पास।
और आज का सवाल है, कॉन्डोम किससे सुरक्षा देता है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, कॉन्डोम किससे सुरक्षा देता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एचआईवी और एड्स से, बी एचआईवी एड्स एसटीआई और अनचाहे गर्भ से, सी केवल अनचाहे गर्भ से, और डी मलेरिया से। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए, ए एचआईवी और एड्स से, बी एचआईवी एड्स एसटीआई और अनचाहे गर्भ से, सी केवल अनचाहे गर्भ से, और डी मलेरिया से।
थैंक यू वेरी मच क्विज मास्टर जी। तो दोस्तों फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND22 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी, और लिखकर भेज दीजिए 9717678223 पर। और दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट आमने सामने की तरफ। श्रोताओ आमने सामने में आज हम बात करेंगे नशे के पुनर्वास के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान जोसफ साहब का। जोसफ साहब आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फ्रांसिस है और मैं एक वॉलंटियर हूँ, नशा मुक्ति और एचआईवी के क्षेत्र में काम करता हूँ।
अच्छा, आपसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि नशे के सेवन के पुनर्वास की क्या प्रक्रिया है और इसमें कितना वक्त लगता है?
देखिए, पुनर्वास की जो अवधि है वो तकरीबन 6 महीने की होती है, और इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे उपचार के कार्यक्रम को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है उसकी शारीरिक अवस्था पे ध्यान देना, दूसरा होता है उसकी मानसिक अवस्था, और तीसरा होता है उसकी आध्यात्मिक स्तर को जांचना। पहले स्तर में ये देखते हैं कि वो इतना कमज़ोर आता है और उसको दवाइयों की और देखभाल की ज़रूरत होती है, तो पहले 2 महीने में ये होता है। दूसरे 2 महीने में उसकी शारीरिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसके मानसिक स्तर पे जाते हैं कि हाँ, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है, क्या वो इस चीज़ को मानता है कि नशा उसकी ज़िंदगी में एक समस्या बन गया था। और तीसरा जो है आध्यात्मिक स्तर, वहाँ पर उस इंसान को इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वो अपनी कमजोरियों को समझने लगता है और आगे जाकर वो किस तरीके से कौन से पड़ाव को कैसे पूरा करेगा।
जोसफ साहब, इसमें अहम चुनौतियाँ कौन सी हैं?
देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत कड़ी हैं। किसी भी परिवार को पता लगता है कि उसका बेटा या उसका पति या उसका भाई नशेबाज है या नशा करने लगा है, तो फैमिली चाहती है, परिवार चाहता है कि उनका बेटा जो है वो जल्दी से अच्छा हो जाए, तो वो उसको जोर जबरदस्ती से किसी भी पुनर्वास केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कर देते हैं। लेकिन वो जो खुद नशे का सेवन करता है वो मानसिक तौर पे तैयार नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब तक कि एक नशेबाज तैयार ना हो नशा छोड़ने के लिए, तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे नशा नहीं छुड़वा सकती।
जोसफ साहब, अगर कोई व्यक्ति नशे की आदत को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ शुरुआती कदम बताइए जो इस आदत को छोड़ने में उसकी सहायता कर सके।
अगर कोई भाई नशा छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे उन सेवाओं को देखना पड़ेगा, ऐसी सर्विसेज को देखना पड़ेगा जहां पर कि इस तरह का इलाज होता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उनके अपने ये पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं सारे देश भर में, है तकरीबन 300 से 350 सेंटर्स ऐसे चल रहे हैं, और वहाँ पर उपयुक्त तरीके से दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन ये उन्हें देखना है जाकर कि वहाँ पर उनको उनके तरह का इलाज मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए सलाह यही होगी कि सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि क्या वो सरेंडर करने को तैयार है कि अब नशे से मैंने तौबा कर लिए, बस कर लिए, उसके बाद ही फिर वो आगे बढ़ के अपना ट्रीटमेंट ले पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
शुक्रिया।
सन्नाटा सुनाई नहीं देता और हवाएं दिखाई नहीं देती, सोचा है क्या कभी होता है ये क्यों।
और दोस्तों अब बारी है कुछ कहने सुनने की, जिसमें आप कहेंगे और हम देंगे आपकी बात का जवाब।
जी हाँ, क्योंकि अब वक्त हो गया है आपकी बात का।
दोस्तों आपकी बात में हम शामिल कर रहे हैं सुरेश कंकरवाल का खत, जो दिल्ली से है, और वो पूछना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को HIV एड्स है तो वो उसके शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। सुरेश जी, HIV का वायरस किसी भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे प्रभाव डालता है और उस व्यक्ति में कोई भी लक्षण उभरने में 7 से 10 साल तक लग सकते हैं।
और ये समय निर्भर करता है उस व्यक्ति के शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पर और उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती पर। शरीर में घुसते ही HIV का वायरस व्यक्ति की इसी क्षमता को नष्ट करने लगता है, यानी शरीर की उन कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है जिनका काम ही है दूसरी बीमारियों से लड़ना। इन कोशिकाओं का नाम है CD4 सेल।
और HIV के शरीर में घुसने के बाद इन CD4 सेल की संख्या घटने लगती है, और जब शरीर एकदम बीमारियों से लड़ने की शक्ति से वंचित हो जाता है तो उस स्थिति को एड्स की स्थिति कहते हैं।
और दोस्तों अगर आपके मन में भी HIV के संबंध में कोई शंका या सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खतों या फिर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।
हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल एड्रेस है naydisha@gmail.com।
या फिर आप हमें अपने सवाल SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9717678223। और जब तक हम करते हैं हमारे श्रोताओं के SMS का इंतजार, तब तक हम सुनते हैं अपना रेडियो धारावाहिक जीवन की राह।
पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना सूरज जयपाल को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर जयपाल को CD4 काउंट करवाने के लिए कहता है। उधर हॉस्टल में वार्डन का कत्ल हो जाता है। वार्डन का पर्स विनोद के लॉकर से बरामद होता है, जिसके आधार पर पुलिस विनोद को गिरफ्तार कर लेती है।
उधर गांव में शीला ये सोच कर परेशान होती है कि डॉक्टर ने उसे तुरंत क्यों बुलाया। इसके लिए वो डॉक्टर को फोन करती है। आइए अब सुनते हैं आगे।
अरे बता, अरे बता क्यों किया तने वार्डन का खून।
मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया।
किसी का खून न किया, झूठ बोले है। वार्डन का पर्स तो तेरी लॉकर से मिला था।
मुझे नहीं पता वो पर्स मेरे लॉकर में कैसे आया। मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया।
कुछ ना किया, कुछ ना किया तने। जनाब
कुछ बताया इसने?
नहीं जनाब, ये तो जी कुछ भी बताने को तैयार ना है। लेकिन जनाब आप चिंता ना करें, मैं जनाब इसके हलक में हाथ डालकर सारी सच्चाई बाहर निकाल लूंगा।
तुम बाहर जाओ।
पर जनाब।
बाहर जाओ राधेश्याम।
जी जनाब।
देखो विनोद, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वार्डन का खून तुमने किया है।
लेकिन सर मैंने वार्डन का खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ।
अच्छा तो फिर ये बताओ कि उस रात को क्या हुआ था।
सच कहो तो मुझे ठीक से याद नहीं। वो नशे की हालत में, वैसे अभी अगर आप थोड़ा लेने दे तो शायद याद आ जाए।
विनोद ये बताओ इस शर्ट के टुकड़े को पहचानते हो?
शर्ट ये शर्ट सर, ये शर्ट का टुकड़ा तो
हाँ बोलो विनोद
सर,
ये शर्ट का टुकड़ा
सर, ये मेरी शर्ट का टुकड़ा नहीं है।
वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, अगर ये तुम्हारी शर्ट का टुकड़ा नहीं है तो फिर किसकी शर्ट का टुकड़ा है?
सर वो मैं ये अजीत की।
अजीत?
अच्छा तो ये बात है।
जी सर, अब आप ही बताइए, सिर्फ HIV पॉजिटिव होने की वजह से नौकरी से निकाल देना कहाँ की इंसानियत है।
सूरज और जयपाल, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली हैं और तुम कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ सकते हो और इस काम के लिए मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा।
जी धन्यवाद वकील साहब।
वैसे आमतौर पर एक नोटिस भेजने से ही कई लोग बात को मान जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोर्ट तक भी जाना पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा, समझे आप लोग।
जी सर,
मैं तैयार हूँ सर, मैं बस अपना हक अपना अधिकार वापस पाना चाहता हूँ सर, ताकि फिर किसी जयपाल को कोई मालिक उसके HIV पॉजिटिव होने की वजह से नौकरी से ना निकाल सके।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे टैक्सी मालिक को एक कानूनी नोटिस तैयार करके भिजवाता हूँ और उसके बाद हम आगे की सारी कार्रवाई करेंगे।
जी सर।
अजीत, ये अजीत कौन है?
अजीत
विनोद, देखो तुम्हारी चुप्पी तुम्हें मौत की सजा दिला सकती है।
नहीं,
मुझे सब सच सच बताओ, कौन है ये अजीत और तुम इसे कैसे जानते हो?
अजीत हमारे कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स में से एक है, वो हमें नशे का सामान लाकर देता है।
अच्छा,
अब तो मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया सर, अब मुझे थोड़ा सा दिलवा दीजिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी सर।
अभी सारी बात खत्म नहीं हुई, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये अजीत की ही शर्ट का टुकड़ा है?
जिस रात वार्डन का खून हुआ था, उस शाम अजीत मेरे कमरे में आया था, मेरे ऊपर उसके कुछ पैसे और नशे के सामान का उधार था, वो उन्हीं पैसों को मुझसे वापस मांगने आया था। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझे जान से मरवा देगा। उसने यही शर्ट पहनी हुई थी।
फिर क्या हुआ?
उस रात मैं टेंशन में था, मैंने खूब नशा किया, नशे की हालत में कमरे से बाहर निकल गया।
फिर आगे?
मैं वार्डन के पास गया, मैंने उससे कुछ पैसे मांगे लेकिन उसने मुझे मना कर दिया।
और तुमने उसका खून कर दिया?
नहीं सर, मैंने उससे उसका पर्स छीना था। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर मैंने उसका खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वार्डन का खून नहीं किया। प्लीज सर, मुझे बस थोड़ा सा दे दो सर।
विनोद,
बस
विनोद,
मैंने वार्डन का खून नहीं किया।
ओ माय गॉड, हवलदार फौरन डॉक्टर को बुलाओ।
भाई वाह, सभी लोग काम कर रहे हैं। हाँ सुरेंद्र
जी। सर,
ये तुम कौन सा चार्ट बना रहे हो?
सर, मैंने इस चार्ट में ऋण संबंधी जानकारियों को दिखाने की कोशिश की है, ताकि हमारे गांव के लोगों को बैंकों में चल रही ऋण संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिल जाए।
और तुम रविता?
सर, मैंने इस चार्ट में दिखाया है कि गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए।
शाबाश शाबाश। और गीता, तुम ये क्या कर रही हो?
राजन सर।
हाँ
सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है।
तो अच्छा बच्चों, तुम सब लोग अपना काम ठीक से करो, मैं बस अभी आया।
जी सर।
रविता, क्या तुझे गर्भवती महिलाओं के बारे में सब मालूम है?
ज्यादा तो नहीं सुमन, लेकिन हाँ काफी कुछ मालूम है, ये सारी जानकारी मैंने किताबों में से जुटाई है।
सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
लेकिन मोहित, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
सुमन प्लीज, मेरी बात तो सुनो।
मैंने तुम्हें कह दिया ना, क्या मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत करूं? चलो रबिता, हम वहाँ चल के काम करते हैं।
सुमन, अब ये सुमन को क्या हो गया?
मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा विनोद।
अरे ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा सरिता, वहाँ इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, उनसे पूछते हैं।
हाँ।
इंस्पेक्टर साहब, मैं विनोद का पिता हूँ।
बैठिए आप लोग, आपको पता है आपके बेटे पर खून का इल्जाम है?
क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा तो बहुत शरीफ लड़का है, हम गांव के लोग हैं साहब, जरूर कोई गलत फहमी हुई है आपको।
मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता।
देखिए, हर माँ बाप को ऐसा ही लगता है कि उनका बेटा मासूम है, लेकिन अभी तक हमें जितने भी सबूत मिले हैं वो सब उसके खिलाफ हैं, और इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि वार्डन का खून आपके ही बेटे ने किया है।
क्या?
और हाँ एक और बात, आपका बेटा नशे का आदी भी है, और वो भी कोई छोटा मोटा नशा नहीं, सिरिंज से नशा करता है वो।
विनोद और नशा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पढ़ने के लिए आया है।
देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स छोटे छोटे शहरों से या फिर गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बुरी संगत में पढ़कर नशे के आदी हो जाते हैं और फिर अपराध कर बैठते हैं। आपका बेटा भी उन्हीं में से एक है।
तो क्या इंस्पेक्टर साहब अभी?
देखिए, जब तक हमारी तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती उसे पुलिस हिरासत में ही रहना होगा, लेकिन उसकी हालत देखकर हमने उसे नशा सुधार गृह में भेजने का फैसला किया है, लेकिन वहाँ भी पुलिस का पहरा उस पर होगा। आप चाहें तो अपने बेटे से मिल सकते हैं।
जी इंस्पेक्टर साहब।
अपने गम से खेलता है, दर्द कितने झेलता है, सोचता तू और कुछ है और कुछ तू बोलता है। अपने दिल को तू मना ले, बीच का पर्दा उठा ले, आजमा ले, आजमा ले, आजमा ले, आज खुद को।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी और मनोरंजन से भरा हमारा ये धारावाहिक जीवन की राह जरूर पसंद आ रहा होगा,
और आप कुछ चीजों को जरूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे होंगे।
जी हाँ।
अच्छा जगत, एक बात बताओ।
पूछो।
जब तुम गांव से शहर कॉलेज में पढ़ने आए थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुमने कुछ सोचा था कि तुम शहर में आकर किन किन चीजों से दूर रहोगे?
प्रेमा, इस सवाल का जवाब मैं एक शब्द में दूं?
हाँ हाँ बिल्कुल।
भाई, मैंने सोचा था कि मैं शहर में आने के बाद एक चीज से हमेशा दूर रहूंगा।
वो कौन सी?
लड़कियाँ।
ओफो जगत, तुमसे तो सवाल करना ही बेकार है। चलो हम अपने श्रोताओं से ही पूछते हैं कि उनकी राय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बसों में आना जाना, रोड क्रॉस करना, और फिर स्कूल में जाके किसी गंदे संगत में न पढ़ना, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करना, इन सब चीजों का ध्यान जरूरी रखना चाहिए।
शहरों में अपना आने जाने का ध्यान रखना चाहिए, और बसों में ठीक ढंग से उतरना और चढ़ना चाहिए, और बाहर कोई चीज देता है जैसे प्रसाद के रूप में तो उसे नहीं लेना चाहिए।
गलत दोस्ती के संगत का ध्यान रखना चाहिए, HIV जैसी खतरनाक बीमारी फैली हमें उससे बचना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमें गलत साथियों के दबाव में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।
नशेड़ियों के साथ से दूर रहना चाहिए, और झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, अपने रहने की जगह ठीक होनी चाहिए।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्या किया जाए में हमारे आज के सवाल पर श्रोताओं के विचार, जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
और दोस्तों, जैसा कि हमारा कार्यक्रम नई दिशा आ पहुंचा है अपने अंतिम पड़ाव पर, तो हमें आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कार्यक्रम नई दिशा आईडियोसिंग मीडिया कंबाइन द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
और हाँ दोस्तों, अगर आप भी भेजा फ्राई सेगमेंट के विजेता बनना चाहते हैं तो कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब देना बिल्कुल न भूलें। SMS करने के लिए हमारा नंबर आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। नंबर है 9717678223। जी हाँ, 9717678223।
और दोस्तों, अब मुझे और जगत को दीजिए इजाजत। हमारी आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
नमस्कार।